الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزان محترم عزداران سید الشہداء کل میں عرض کر رہا تھا مومن ہونے کے ناطے ایک عزادار ہونے کی بنا پر اہل بیت سے وابستہ ہونے کی بنا پر ہماری ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس قدر معرفت حاصل کریں اور اتنے اپنے ہوش حواس کامل رکھیں کہ دنیا میں جو اطراف سے فتنے اٹھ رہے ہیں جن کے عنوان بہت خوبصورت ہوتے ہیں جن کی ہیڈنگز بہت پیاری ہوتی ہیں انسان دوست ہوتی ہیں دین دوست ہوتی ہیں طبیعت کو پسند ہوتی ہیں لیکن ان کے پیچھے ایک بھیانک حقیقت ہوتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو نہیں جانیں گے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو عزان محترم جس طرح سے تاریخ میں لوگ دھوکہ کھاتے آئے ہیں ہم بھی دھوکہ کھا جائیں گے لوگ یہی دیکھتے تھے کہ آزان ہو رہی ہے آپ دیکھیے جب امام سجاد علیہ الصلوۃ
والسلام
کے خطبے کو ختم کرنا چاہا تو سہارا کس چیز کا لیا گیا اذان کا لیا گیا جب مظلوم کربلا کا قتل کرنا چاہا تو کس کا سہارا لیا دین کا سہارا لیا تکبیر کا سہارا لیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ دین سے بالکل باہر ہیں اور ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم دین سے بالکل باہر ہیں نہیں اپنے آپ کو دین کے اندر داخل کرتے ہوئے مظلوم کربلا کو دین سے باہر کیا کیوں اپنے آپ کو خلیفہ رسول کا عنوان دیا اپنے آپ کو وارث رسول بنایا اپنے آپ کو اس طرح سے پہچانوایا کہ ہمارا لوگ احترام کریں ہمیں لوگ مقدس سمجھیں ہمیں لوگ دیندار سمجھیں یعنی دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو برباد کیا گیا لہٰذا انسان اگر دیندار بننا چاہتا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان دین کی معرفت بھی حاصل کرے اسی لیے کہا گیا من ماتا ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاہلیہ انسان مر جائے اور اسے اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مر سکتا کیوں کہا گیا کہ امام کی زمانے امام زمان کی معرفت حاصل کرے اس لیے امام وہ ہوتا ہے ہر زمانے کے امام وہ ہوتا ہے جو مرکز دین ہوتا ہے جو روح دین ہوتا ہے جو ستون دین ہوتا ہے جو دین کو نشر کرنے کا مرکز ہوتا ہے لہذا انسان جیسے جیسے اپنی معرفت کو امام کی معرفت کے نزدیک کرتا جائے گا وہ اتنا اتنے ہی دین سے آشنا ہوتا چلا جائے گا وہ اتنا دین سے قریب ہوتا چلا جائے گا یہ عزاداری سید الشہداء کا جو مقصد ہے ہدف ہے ایم ہے وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مکتب امامت سے روشناس ہوں زیادہ سے زیادہ مکتب امامت کی ڈیفینیشن کو سمجھ سکیں زیادہ سے زیادہ مکتب اسلام کی اور مکتب امامت کی جو تعریف کی گئی ہے جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں اور اس کو ہم اس کی ہم معرفت حاصل کر سکیں اعزان محترم کل میں نے آپ کے سامنے ان چیزوں کا ذکر کیا مثال کے طور پہ آزادی بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کو غلط استعمال کیا گیا ہیومن رائٹس بہت اچھی چیز ہے لیکن اسے غلط استعمال کیا گیا انسان کو फैशन तो बड़ी एक अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है, तरक्की भी होती है, लेकिन उसको एक गलत अंदाज से पेश किया गया। इल्म एक अच्छा उनवान है लेकिन उसको दीन के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया। मासूम की इताअत एक अच्छी चीज है लेकिन उसको तकलीद के मुकाबले में बयान कर दिया। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत एक बेहतरीन चीज है लेकिन उसके सामने शिर्क करने लग गए। इंसान ने मातम के नाम पर नमाज को तर्क कर दिया, मोहब्बत अहले बैत के नाम पर बेदीनी को फैलाना और बेअमली की दावत देना शुरू कर दी। ये उनवान बड़े मुकद्दस थे और जो उनवान को सही तरह से नहीं समझ सके वही अफराद उसका शिकार हो गए, और वो अफराद जब शिकार हो गए तो वो शिया होते हुए भी बेअमल बन गए, वो शिया होते हुए भी दीन से दूर चले गए, यानी जिनके पास एक नहीं 14 चिराग थे वो भी हिदायत से महरूम हो गए, जिनके पास एक नहीं 14 मासूमीन थे वो भी गुमराह हो गए। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये थी कि उसका इस्तेमाल, अच्छा दुनिया ने इस्तेमाल भी उसका इस तरह से किया कि इस्तेमाल करते हुए भी मिंबर का इस्तेमाल किया गया, किसी ऐसे मकाम से जो गुनाह का मकाम हो, जो मासियत का मकाम हो, वहां से दीन को बर्बाद नहीं किया जाता। मैंने कल कुरान मजीद की आयत पढ़ी थी, अल-फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, क्योंकि ये तमाम चीजें फितनागर हैं और फितना जो होता है वो कत्ल से ज्यादा शदीद है। ये सूरह बकरा की आयत है, लेकिन सूरह बकरा में एक और मकाम पे खुदा कहता है अल-फितना तो अकबर मिन अल-क़त्ल, फितना जो है कत्ल से ज्यादा बड़ा है। यानी दो क्वालिटीज फितने की बताई कुरान मजीद ने, एक बताई शदीद है, एक बताई कबीर है, बड़ा है, यानी ये ज्यादा भी होता है और शिद्दत के साथ पावरफुल भी होता है। यानी फितना जो पावरफुल भी है और बिगेस्ट भी है, किस चीज से? कत्ल से। क्यों है? लिहाजा जाने मोहतरम, कल मैंने मसादीके फितने को बताया था, लेकिन आज मैं फितने की डेफिनेशन बयान करना चाहता हूँ ताकि इंसान को पता चल जाए फितना होता क्या चीज है, कितनी खतरनाक चीज है। अगर वो हमारे दरमियान राइज हो जाए तो वो हमको बर्बाद कर देगी। फितना क्यों शदीद है, फितना क्यों कभी है, फितने को क्यों कहा गया शद्दो मिनल कत्ल, फितने को क्यों कहा गया अकबर मिनल कत्ल, फितना क्यों कत्ल से ज्यादा बड़ा है, फितना क्यों कत्ल से ज्यादा शदीद है? इसलिए फितना कत्ल जो होता है वो इंसान के जिस्म को कत्ल करता है, इंसान के जिस्म को बर्बाद कर देता है, इंसान के जिस्म पर हमला करता है, लेकिन फितना जो होता है वो इंसान की रूह पर हमला करता है। लिहाजा रूह पे हमला जो है वो संगीन है, वो सख्त है। रूह अगर मुतासर हो जाए, रूह अगर मजरूह हो जाए, रूह अगर जख्मी हो जाए, रूह को अगर जख्म लग जाए तो उसको हील अप होना उसका मुश्किल होता है, जिसमें बस इसके इंसान के जिस्म पर कोई हमला कर दे। लिहाजा फितना इस माना में अकबर भी है, इस माना में अशद भी है, और इसी तरह से जो कत्ल है उसका करना जो होता है मुश्किल होता है, लेकिन फितना फैलाना बहुत आसान है। इसलिए दुनिया में आपको कातिल अफराद कम मिलेंगे, फितना घर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि फितना फैलाना आसान है, वो आसान काम है, लेकिन कत्ल करना एक मुश्किल काम है। लिहाजा खालिक कायनात ही बरबाद है, फितना शदीद है, फितना अकबर है, हमें फितने से बचना चाहिए क्योंकि फितना बर्बाद कर देता है। लिहाजा अगर कोई चाहता है कि किसी कौम को बर्बाद कर दे, किसी कौम को मलियामेट कर दे, किसी कौम को खत्म कर दे, तो वो कत्ल के जरिए खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फितने के जरिए बर्बाद कर सकता है। कोई कौम भी कत्ल के जरिए फनानी पजीर नहीं होती, लेकिन कौमें फितने के जरिए खत्म हो जाती हैं, सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। इसलिए कि इंसान कहाँ तक कत्ल करेगा, किसको कत्ल करेगा? कत्ल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फितना कर देना आसान है। देखिए तशय्यों के साथ भी हुआ, कत्ल की भी साजिश चली गई, फितने की भी साजिश चली गई, लेकिन आज तशय्यों में इतने ग्रोह जो बन रहे हैं उसकी वजह यह है कि तशय्यों फितनों से वाकिफ नहीं हो रही थी, लोगों ने अपनी तालीम को हासिल करना छोड़ दिया था, इक्तफा सिर्फ सुनने और सुनाने पर किया था, खुद किताबें पढ़ते नहीं थे, नहजुल बलागा तक का मुताला नहीं करते थे, लेकिन नारा लगाते थे। उसका नतीजा यह निकला कि कौम को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है, कौम को बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि फितना शदीद है। फितना किसी कौम को बर्बाद कर सकता है, कत्ल किसी कौम को बर्बाद नहीं कर सकता, कहां तक इंसान कत्ल करेगा? लेकिन फितने के जरिए इंसान को आराम से बर्बाद, इंसान क्या पूरी कौम को आप बर्बाद कर सकते हैं। और एक और जहद से फितना शदीद है, अगर कोई शख्स कत्ल करे, यानी जो शख्स कत्ल हो जाए अगर, तो उससे क्या चीज सेल्फ हो जाती है, वो क्या चीज लूज करता है? दुनिया को लूज करता है, बस दुनिया में उसको 4 साल और जी लेता, 10 साल और जी लेता, 20 साल नेमा पे दुनिया से फायदा उठाता, तो दुनिया उससे छीन ली गई कत्ल के जरिए। लेकिन फितना इतनी बुरी चीज है कि अगर इंसान फितने में पड़ जाता है तो दुनिया भी उसके हाथ से जाती है और आखिरत भी उसके हाथ से जाती है। लिहाजा फितना शदीद, फितने के जरिए इंसान की आखिरत बर्बाद होती है, कत्ल से सिर्फ इंसान की दुनिया बर्बाद होती है, दुनिया से उसका दामन कोता हो जाता है, लेकिन फितना जो है वो इंसान की आखिरत को खा जाता है। क्यों? इसलिए कि उलमा ने बयान किया, इसलिए कि फितना जो है वो इंसान के बातनी चीज का नाम है, कत्ल जो है जाहिरी चीज का नाम है। लिहाजा जब भी कहीं कत्ल होता है तो उसे ट्रेस कर लिया जाता है, क्यों? कत्ल के निशान पाए जाते हैं, फितने के निशान नहीं पाए जाते। फितना एक दरूनी कैफियत का नाम है, एक इंटरनल चीज का नाम है, लेकिन कत्ल एक एक्सटर्नल चीज का नाम है, एक बैरूनी चीज का नाम है। लिहाजा कत्ल अगर कोई किया जाए तो कातिल को ट्रेस किया जा सकता है, उस कत्ल का भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन फितने के निशान होते ही नहीं है। वो बगैर वो दस्ताने पहनकर और मोजे पहन के आता है, जूते पहन के ही नहीं आता वो। लिहाजा इतने छुपके आता है कि वो जाहिर हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो ज्यादा बर्बाद करता है, वो खतरनाक तरीन हो जाता है। कभी अगर आप देखिए फितनागर जो होते हैं, इंसान को अगर पता चल जाए ये मेरे बाप का कातिल है, ये मेरे चचा का कातिल है, ये मेरे भाई का कातिल है, तो इंसान कत्ल के जरिए अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान लगा लेता है कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। जाहिर कातिल मेरा दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन जब फितना किया जाता है, जब फितना परवरी होती है, तो उसमें नहीं समझ आता कि इंसान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि दुश्मन भी दोस्त के लिबास में आता है और फितना अंगेजी करता है। वो भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हमें बहुत पसंद होते हैं, वो भी हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जिसके बिना पर नतीजा ये निकलता है कि हमें समझ नहीं आता कि फितना कौन कर रहा है, दोस्त फितने इस फितनागर में दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ये कुरान मजीद अगर किसी, ये उलमा ने जितनी तफसीर बयान की सब उलमा की है, उलमा ने इसकी तफसीर इसीलिए इस बयान की कि कुरान जब ये कह रहा है ये शदीद है कत्ल से ज्यादा और ये अकबर है कत्ल से ज्यादा, तो इसके मायने इसकी शिद्दत, यानी आपको तो ना पता चले कि आप दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कत्ल से तो पता चल जाता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, लेकिन फितना इतनी सख्त और गिरह चीज है, इतनी सख्त चीज है फितना, कि फितने में नहीं पता चलता कि इंसान का दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। लेकिन इससे भी बड़ा, क्योंकि फितना बहुत बड़ा है, जब भी कोई शख्स कत्ल करता है वो अपने आप पर शक नहीं करता कि मैं कातिल हूं कि नहीं हूं, उसे अपने कातिल होने पर यकीन होता है, वो इस बात पे जरूर शक करता है कि मैं हक पे था कि बातिल पे था, लेकिन अपने कातिल होने में उसे शक नहीं होता, यकीन से जानता है कि मैंने कत्ल किया, मैं इसका कातिल हूं, दुनिया जानती हो चाहे ना जानती हो, वो हजार पर्दों में छुप जाए, लेकिन कातिल अपने आप को बहुत अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन फितनागर जो होता है वो खुद अपने आप को भी नहीं पहचानता कि आया मैं फितना कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि फितना अशद है कत्ल के जरिए, कत्ल से ज्यादा शदीद है। ये जो कर्बला जो है ये फितने की देन है। कर्बला इतनी आसानी से आप समझते हैं रूनुमा हो गई, इतनी आसानी से कर्बला बर्पा हो गई। कर्बला बर्पा इसलिए हुई कि उसके मुकदमात बनाए बयान किए गए, उसके मुकदमात बनाए बयान बनाए गए जिसकी बिना पर लोग नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए तैयार थे। देखिये पैगंबर इमाम हुसैन ने कितने खुतबात दिए, खड़े हुए इमाम हुसैन ने पैगंबर इस्लाम का मामा भी सर पे रखा, पैगंबर इस्लाम की अबा भी दोष पे रखी और लोगों के सामने आए, कहा देखो ये वही अमामा है जो रसूलुल्लाह पहनते थे, ये वही अबा है जो रसूलुल्लाह पहनते थे, जो मुझे नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ वो जान ले, जो जानता है तो वो जानता है। यानी इमाम हुसैन ने भी उनको डार्क में नहीं रखा, उनको बयान किया, उनको बताया कि देखो मैं कौन हूँ। लेकिन क्या वजह थी? क्योंकि वो फितना परवर अफराद थे, इस कदर उन्होंने जमीना हमवार कर लिया था अहले बैत के खिलाफ। अहले बैत क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम में जो इमामुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन थे उन पर सब वो शितम की जाती थी। इमाम हुसैन का दौर है, आज हमारे सामने कोई अमीरुल मोमिनीन को गाली दे तो हमें कितना बुरा लगता है, आज अमीरुल मोमिनीन कोई तौहीन करे हमें कितना बुरा लगता है। आप हुसैन की मजलूमियत को सोचें तो, यानी कत्ल होना हुसैन के लिए आसान था लेकिन बाप को बुरा सुनना कितना मुश्किल था। मिंबर से कहा जाता था 20 साल तक इमाम हुसैन ने सुना है, 10 साल तक इमाम हसन ने सुना है, ये तो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में जाकर खत्म हुआ है, तकरीबन 90 साल या 95 इयर्स अमीरुल मोमिनीन को हर खतीब मिंबर पे अल्लाह और रसूल की हमद सना के बाद अमीरुल मोमिनीन पे सब शितम करता था। ये अहले बैत के लिए सख्त था, क्या था, कैसे हो गया जो इतने कमालात का मालिक था, जो इतने जमाल का मालिक था, जो इस्लाम में पहले रसूलुल्लाह के बाद पहली शख्सियत नजर आती है, जंग हो चाहे मैदान हो चाहे हिजरत हो चाहे नशर हो चाहे वही हो चाहे कुरान हो, जो अली इतनी बड़ी शख्सियत हो उसकी शख्सियत को मखदूश कत्ल के जरिए नहीं किया जा सकता लेकिन फितने के जरिए किया जा सकता है। क्यों? इसलिए कि कत्ल के अवजार कम हैं। इंसान तलवार से कत्ल करता, नेजे से कत्ल करता, तीर से कत्ल करता, लेकिन जो फितना है वो कुरान के जरिए भी हो सकता है, वो हदीस के जरिए भी हो सकता है, वो मस्जिद के जरिए भी हो सकता है, वो मेहराब के जरिए भी हो सकता है, वो गिरिए के जरिए भी हो सकता है, वो हंस कर भी हो सकता है, वो इंसान सियासत के जरिए भी हो सकता है, वो हुकूमत के जरिए भी हो सकता है, वो हर चीज के जरिए फितना अगर करना चाहे तो हर चीज के लिए हो जाता है। लिहाजा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम यही शिनाख देना चाह रहे थे अपने शियों को कि जब इमाम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि इमाम से के सामने जब आपकी तौहीन की गई, अहले बैत की तौहीन की गई, तो इमाम ने यह नहीं कहा कि मुझे मिंबर पर जाने दो, इमाम ने कहा मुझे इन लकड़ियों के पे जाने दो ताकि मैं भी कुछ कह सकूं, जबकि उसकी शक्ल और सूरत मिंबर जैसी थी, जैसा मिंबर सजाया जाता वो मिंबर था, लेकिन इमाम सज्जाद ने उसको लकड़ी के टुकड़े इसलिए कहा था कि अगर शक्ल और सूरत एक हो जाए तो उससे कभी धोखा ना खाना, ये देखना कि उस पर से पैगाम क्या दिया जा रहा है। अगर दीन का पैगाम दिया जाए तो मिंबर है, अगर तौहीन अहले बैत और ये लकड़ियों के टुकड़े सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कल मैंने सीरत पैगंबर इस्लाम से भी आपको एक मिसाल दी थी कि पैगंबर इस्लाम ने मस्जिद को गिरवा दिया कि उन्होंने मस्जिद से ना घबरा जाना कि अल्लाह का घर है, इधर इबादत की जाती है, इधर सज्दे किए जाते हैं, इधर तिलावत की जाती है, देखना इस मस्जिद की बुनियादें किस पर रखी गई है, अगर निफाक में रखी गई है तो मस्जिद का उन्वान मुकदस नहीं हो सकता। लिहाजा अगर इसी तरह से हमने मार्फत हासिल करते रहते और दुनिया इसी तरह से मार्फत हासिल करती तो आज इस इख्तलाफ की बात नहीं थी, आज इतना इख्तलाफ ना होता, आज तशय्यु इतनी मुंतशिर ना होती, आज मुसलमानों में इतना इख्तलाफ ना होता, इसलिए कि जो फितनागर चीजें थी उनको हम समझ नहीं सके। हकीकत में अगर इस बात को मैं एक जुमले में अपनी बात को तमाम कर दूं तो कत्ल जो होता है वो इंसान का होता है और फितना जो होता है वो इंसानियत का कातिल होता है, वो इंसानियत को खत्म कर देता है, इंसान में से इंसानियत ले लेता है अगर उसके अंदर फितना परवरी आ जाए, अगर वो फितना करने लगे, अगर वो फितना परवर हो जाए उसे पता नहीं चलता, कभी वो टाइम से फितना करेगा, कभी वो बात से फितना करेगा, कभी वो खाकर फितना करेगा, कभी दावत देकर फितना करेगा, कभी दावत में ना जाकर फितना करेगा, कभी इज्जत देकर फितना करेगा, कभी जलील करके फितना करेगा, यानी उसके पास जो भी हरबा होगा वो हर हरबे के जरिए अपने फितने को आजमाएगा। सलात पढ़े मोहम्मद वाले, लिहाजा इस दौर में मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान ये नहीं है लेकिन मैं जा रहता हूं वहां पे ये मुसीबत है और पाकिस्तान में ये मुसीबत जो है बहुत अलग है। वो मुसीबत ये है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्यामे विलादत आते हैं तो वहां पे बाज अफराद कहते हैं अहले बैत का फला इमाम का जहूर हो गया उसको मुबारक हो, या नुजूल हो गया उसे वो मुबारक हो। वो कहते नहीं, आइमे अथार विलादत नहीं करते, आइमे अथार जो है वो नुजूल करते हैं, या आइमे अथार जो है वो जहूर करते हैं, वो इस विलादत वगैरह के कायल नहीं है। अब ये उनके नजदीक अपना जो भी है, लेकिन अजीजानी मोहतरम सवाल एक मैंने सवाल किया क्योंकि मुझे भी टेक्स्ट मैसेज बहुत आते हैं ज़हूर इमाम हुसैन मुबारक हो, तो मैं उनसे कहता हूँ 15 शाबान को तुम क्या कहोगे, मुझे
क्या कहेंगे,
यानी 15 शाबान को भी ये कहोगे ज़हूर इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ मुबारक हो, अगर इमाम का ज़हूर हो गया तो इसके मायने फिर हमें किस चीज की जरूरत ही नहीं। इसकी वजह यह है कि उनवान को अल्फाज को उसी जगह पर इस्तेमाल करो, मासूमीन ने लफ्ज वलद इस्तेमाल किया है, लफ्ज वालिद इस्तेमाल किया है, लफ्ज तौलीद इस्तेमाल किया, वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो मासूम से आगे जब भी इंसान बढ़ेगा तो इंसान गुमराह हो जाएगा। अब आप देखिए इन चीजों के फितना, इससे लोगों में इख्तलाफ पैदा होता है, वो समझते हैं शायद अहले बैत भी तौहीन कर रहे हैं, वो समझते हैं हम अहले बैत का बहुत एहतराम करें, حالانکہ نہ یہاں پہ توہین ہے نہ یہاں پہ احترام ہے. الفاظ کو اگر صحیح جگہ استعمال نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ غلط آنے لگتا ہے. لوگ یہی کہیں گے 1400 برس سے یہ ایک ظہور کا اعلان کر رہے تھے, لو ان کے بعد میں ان کے جو 12ویں امام تھے ان کا بھی ظہور ہو گیا, تو کیا جب ظہور ہوگا تو اس وقت کیا کہیں گے؟ اس کا وجہ یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے ممبروں سے سنا تو بہت کچھ, لیکن صرف سننے تک علم رکھا. اگر اس کو جا کے تحلیل کرتے, کبھی خود پڑھتے, وجہ یہ ہے کہ ہم بھی بیان کرتے ہیں, یعنی میں بھی یہ بیان کرتا ہوں, دیگر ذاکرین علماء بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اہل بیت کا وجود اس دنیا میں آنے سے پہلے موجود تھا. اہل بیت اس دنیا کے قبل بننے سے قبل موجود تھے, اس دنیا نہیں اس پوری کائنات کے وجود سے پہلے ان کا وجود تھا. ذات اقدس الہ کے بعد اگر کوئی وجود کا تصور تھا تو اہل بیت کا تصور ہے. انبیاء کے مرسلین کے وجود سے پہلے کوئی وجود کا تصور ہے تو آئمہ اطہار کا وجود ہے. یقیناً وہ وجود پہلے رکھتے تھے. اگر مراد آپ کی وجود پہلے رکھنے کی ہے تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عالم زر میں تم سب افراد سے اقرار لیا تھا, تو عالم زر میں تو ہم سب وجود رکھتے تھے, تو عالم زر میں جب ہم سب وجود رکھتے تھے تو آج ہم اگر آگئے تو ہم نے بھی ظہور کیا. اگر اس معنی میں لیا جائے کہ پہلے سے وجود رکھتے تھے اور آگئے تو ہر انسان پہلے وجود رکھتا تھا, ہر انسان کا پہلے وجود تھا, ہر انسان نے خدا کو اللہ تو رب گم کہا, یا اللہ یقیناً تو ہمارا رب ہے, سب نے خدا بندے بلال کو بلا کہا تھا, یقیناً اے خدا تو ہمارا رب ہے, یقیناً ہم سب تھے اس عالم زر میں لیکن ہم اس عالم میں آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ اطہار ہو چاہے ہم لوگ, ہر ایک کا وجود پہلے تھا لیکن ہم سب میں جو وجود میں ہے حساب سے مقدم میں وہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس وجود کو خلق کیا ہے وہ 14 معصومین کا وجود ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی خدا نے خلق کیا وہ ان کے ذریعے خلق کیا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ
محمد.
اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, یقیناً کیونکہ وہ ایک مثال علماء اکثر دیا کرتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے, یہ ٹرانسفارمر جو ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں تک بجلی پہنچاتے ہیں, اگر ڈائریکٹ بجلی آ جائے تو ہمارے بلب بھی جل جائیں, کمپیوٹر بھی جل جائیں, ہمارے فریج بھی جل جائیں, ٹی وی بھی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کافی پاور ہوتی ہے, وہ پاور کنورٹ کر کے ہم تک بھیجتے ہیں. خدا بند متعال اتنا عظیم ہے, اتنا بلند ہے, اتنا کبیر ہے, اتنا عظمتوں والا ہے, اتنا بے عیب ہے کہ مخلوق میں ان معصومین کے سوا کوئی اس سے ڈائریکٹ فیض حاصل ہی نہیں کر سکتی تھی, کوئی وجود میں شے آ ہی نہیں سکتی تھی. یہ فقط 14 کا وجود تھا جس نے ڈائریکٹ طور پر, اہل بیت علیہ السلام نے ڈائریکٹ طور پہ فیض وجودی کو اللہ تعالیٰ سے کشف کیا, دیگر مخلوقات نے کیپیسٹی نہیں دی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچ میں اہل بیت کو رکھا, پھر ان کے ذریعے تمام کائنات کو فضل دیا, رزق دیا تو ان کے ذریعے, حیات دی تو ان کے ذریعے, زندگی دی تو ان کے ذریعے, اولاد دی تو ان کے ذریعے, دین دیا تو ان کے ذریعے, شریعت دی تو ان کے ذریعے, سانسیں دی تو ان کے ذریعے, سورج دیا تو ان کے ذریعے, چاند دیا تو ان کے ذریعے. کائنات کا ہر ذرہ خدا نے جب اس کو وجود بخشا ہے تو اہل بیت کے ذریعے بخشا ہے. محترم, کل گفتگو میں میں نے آپ سب کے سامنے یاد کیا کہ ہمیں از حیث مومن ان چیزوں سے تیار ہونا چاہیے. از حیث مومن ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارے اطراف میں کیا سیاست ہو رہی ہے, کون کیا کر رہا ہے, تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہو جائیں, مومنین ایک دوسروں کے دست و گریباں نہ ہو جائیں. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ جہالت کی بنا پر ہوتی ہیں. جب انسان جہالت رکھتا ہے اس کی بنا پہ انسان کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں, اور اس کی بہترین راستہ یہ کہ انسان علم حاصل کرے. جب باب مدینہ تو علم سے وابستہ ہے تو علم سے کیوں مجھے رہتا ہے, علم حاصل کرے. گھر گھر میں انٹرنیٹ ہے, جو بھی لفظ آپ ڈالیں گے اس لفظ سے متعلق آپ کا ڈیٹیل آ جائے گی. آپ کو جو بھی چاہیے, توحید کی درس چاہیے توحید پہ درس بھرے پڑیں, امامت چاہیے تو امامت آپ کو سمجھائی جائے گی, قیامت سمجھ میں آئے قیامت وہاں پہ مل جائے گی, موت کا تصور نہ ہے تو موت کا تصور مل جائے گا, ہر چیز وہاں پہ نظر آئے گی. لیکن عزیزان محترم, اس کے لیے شرط یہ کہ انسان خود کوشش کرے. اہل بیت سے وابستگی उस वक्त इंसान की माना रखती है जब अपने किरदार में अपनी गुफ्तार में वो तब्दीली लाने को तैयार हो जाए। वरना इंसान अगर जाहिरी तौर पे जो अहले बैत के जमाने में जिंदगी गुजार रहे थे, जिनके घर अहले बैत के घर के साथ थे, जो अहले बैत के साथ बैठ कर नमाज पढ़ रहे होते थे, लेकिन अगर असर नहीं लेना चाहते थे तो उन पर कोई असर नहीं होता। तो फिर आज हम खाली तस्करा करके कैसे असर हासिल कर सकते हैं? जब तक अमली दुनिया में हम कदम नहीं रखेंगे उस वक्त तक हम अहले बैत से नजदीक नहीं हो सकते। अहले बैत उस मकाम का नाम है, उस अजमत का नाम है जिसके लिए कुरान ये सनद दे रहा है कि नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मैंने कल अर्ज सलवात पढ़ी थी, मैंने कल अर्ज किया था कि अल्लाह ताला ने इस आयत को बतौर इस्मत नाजिल किया है, और मैंने कहा था इंशाल्लाह बाद में बयान करूंगा इस्मत इससे कैसे साबित होती है। असल ये बात है, अहले बैत के मिज़दाक का मैंने आपको बता दिया, इसमें दो ही राय पाई जाती हैं, या तो अज़वाजे रसूल शामिल हैं या अज़वाजे रसूल शामिल नहीं है। लेकिन अहले बैत के शामिल होने में शक और शुबा नहीं है, इन पंजतन के शामिल होने में, क्योंकि इसका खिलाफ जो कौल है वो खुद अहले सुन्नत तस्लीम नहीं करते। उलमा अहले सुन्नत उसको नहीं मानते, वो सिर्फ बुग्ज और अदावत की बिना पर है जिन्होंने अहले बैत को खारिज किया। लिहाजा मैंने उसका कौल आपको नकल कर दिया था, उसका जवाब भी दे दिया था कि अगर अहले बैत इसमें शामिल नहीं है और अहले बैत के लिए खुदा ने दुआ की थी तो फिर आयत कौन सी नाजिल हुई है? फिर वो आयत दिखा दो, अगर इसके मायने रसूल की दुआ मुस्तजाब नहीं है तो फिर इस बात को तस्लीम करो। यकीनन ऐसा नहीं है, वो बुक्स की बिना पर है। जब मैंने ये पढ़ा जिदाने मोहतरम किताब में, तो मैंने देखा ये आदमी कैसा है। तमाम जहान अहले सुन्नत इस बात को कबूल करता है कि इससे पंजतन पाक शामिल है, ये शख्स कैसे कह रहे हैं इससे पंजतन शामिल नहीं है। मैंने थोड़ा सा उसका मुकदमा खोला, उसकी मैंने हिस्ट्री देखी, तो यकीन करें जो कुरान कहता है कुरान के सिवा कुछ नहीं होता। कुरान ने जब मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो देखा, मैंने कहा शायद कोई मौसूफ की आल औलाद सामने नजर आए, पता चले आजकल उनकी औलाद कौन है। जब हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें लिखा था इनकी कोई औलाद नरीना नहीं थी। मैंने कहा यकीनन जो फातिमतु ज़हरा के साथ इतना बुग्ज रखता होगा वो इतना शानिया का हुआ लबतर होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नस्ल उसकी मुनकरिज हो गई, वो लिखने वाला लिखकर चला गया। लेकिन जिस नजरिए को अहले सुन्नत में देखा जाता है और तमाम अहले सुन्नत तकरीबन 95% उसको कबूल करते हैं, वो यही है कि अहले बैत से मुराद अजवाजे मुतहरात भी हैं और पंजतने पाक भी हैं। अब बहस ये है कि आया इसमें पंजतन है, शिया जो नजरिया उसमें यही है कि सिर्फ पंजतन इसमें पाए जाते हैं, अजवाज नहीं। अजवाज का अपना स्टेटस अलग है, कुरान ने उनको उम्मुल मोमिनीन कहा है, उसका कोई इंकार नहीं कर सकता। कुरान ने जो उनको एहतराम दिया वो उनका मकाम है, लेकिन ये मकाम मकाम अहले बैत में। मैंने अर्ज किया जो दलील पेश की जाती है वो दलील ये है कि लुगवी हवाले से अहले बैत का लफ्ज आज भी अरब में बीवी को भी शामिल होता है और बच्चों को भी शामिल होता है। आज भी किसी, चाहे वो शिया अरब हो चाहे वो सुन्नी अरब हो, जब अरब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो लफ्ज अहले बैत में बीवी को शामिल करते हैं और लफ्ज अहले बैत में औलाद को भी शामिल करते हैं। लेकिन यहां पर यह सवाल यह है कि आया कुरान मजीद में और अहदीस मुबारका में जो लफ्ज अहले बैत इस्तेमाल हुआ वो लुगवी माना में इस्तेमाल हुआ या कोई इस्तिलाह में इस्तेमाल हुआ? मैं पहले छोटा सा आपको एक बता दूं, मेरे जो वहाबी हजरात उनसे गुफ्तगू कम होती है, अहले सुन्नत से मैं रखता हूँ क्योंकि उनसे मेरा मसला नहीं है, लेकिन वहाबियों से अगर होते हैं तो मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। लेकिन इस दफा जो हज पे गया उनसे काफी जगह गुफ्तगू हो गई, उनमें एक मौजू ये भी आया, ईरान ये काफिला था, वो ईरानी काफिले से लड़ रहे थे इस बात पर तुम लोग अजीब लोग हो। तो कहा क्या? कहने लगे तुम अली को तो अहले बैत में शामिल करते हो, अकील को अहले बैत से निकाल देते हो, तुम जो हसनैन को तो अहले बैत से शामिल करते हो और फलां को तो अहले बैत से निकाल देते हो, तुम्हारे अहले बैत का मियार ही नहीं पता। तो मैंने उससे आगे बढ़ के कहा, पहले तो उन्होंने बेचारे वो जो जवाब दे रहे थे आम अफराद थे, जवाब देने की कोशिश की, वो जवाब उससे नहीं बन सका कि अब इसका जवाब क्या दें। वाकई हकीकत में आप किसी शिया तफसीर को उठा के देख लें, जनाब ज़ैनब को जनाब उम्मे कुलसूम को भी अहले बैत में शामिल नहीं किया, कहानी हसन और हुसैन इस आयत में शामिल है, लेकिन यानी बिला फसल बेटियां हैं दोनों, लेकिन वो इस आयत की मुस्ताक नहीं है। हजरत अब्बास जिनका मलम उठा के फिरते उनको अहले बैत में शामिल नहीं करते इस आयत में, क्योंकि नहीं आए तो अहले बैत के लिए आई है पंजतन पाक या उन मासूमीन के लिए जो इस क्राइटेरिया पे हैं, चाहे वो चार का मासूमीन। लेकिन हमारी बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनको अहले बैत इस आयत तथहीर में शामिल नहीं करते। किसी मुफस्सिर ने आज तक जुरात नहीं की कि जनाब कुलसूम का नाम नीचे लिख दे, जनाब ज़ैनब का नाम लिख दे, हजरत अब्बास का नाम लिख दे, तो इसके माना क्या हो। मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसके माना क्या हुए कि हम कोई अहले बैत के माना में बुग्ज़ और अदावत और तासुब से काम नहीं लेते। हम औलाद अली में बास को नहीं शामिल करते हैं, तो हमसे दूसरों की क्यों बात करते हो। फिर मैंने उसको जवाब आगे बढ़ के दिया, मैंने कहा भाई बात सिर्फ इतनी है कि तुम भी ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो, हम भी ये जानते हैं कि अहादीस और रिवायात के अंदर हर चीज जो है लुग़वी माना में इस्तेमाल नहीं हुई है। मैंने कहा उस आयत के तुम माना क्या करोगे, फी क़ल्बिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, जो मुनाफिकीन के लिए आई है इनके कल्ब में मर्ज पाया जाता है और अल्लाह ताला उस मर्ज को बढ़ा देता है। मैंने कहा इसके मायने सारे मुनाफिकीन जो होते थे हार्ट अटैक से मरते थे, उनके दिल में सुराख होता था, उनको क्या कैलोरीज उनकी ज्यादा हो जाती थी, क्या मसला होता था, उनके दिल सालिम होते थे। आज भी बहुत से मुनाफिक होंगे कि दिल का मसला नहीं है, यहाँ दिल से मुराद ये जो हमारे सीने में दिल लगा मुराद नहीं है, नहीं उनकी रूह बीमार है, खुदा उसकी रूह में इजाफा करता है, बीमारी में इजाफा करता है। ये सुम्मुम बुक्मुम उम्यम फहुम ला यफ़क़हून, ये सुन भी नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो क्या काफिरों की आंखें अंधी होती हैं, क्या उनके कान बहरे होते हैं। अगर आप लुग़वी माना में ले लें तो इसके मायने सारे काफिर बहरे होते हैं, नहीं वो देख रहे होते हैं लेकिन उसके देखने मार्फत नहीं होती, वो सुन रहे होते हैं लेकिन सुन के उनको समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन ये थोड़ी फिजिकल वो सुनते नहीं है या वो देखते नहीं है। मैंने कुरान की भाई यदुल्लाह फौका है दी, क्या खुदा की भी एक हथेली और पांच हाथ है, पांच उंगलियों वाला हाथ है कि अल्लाह ने वो जो है दूसरों के हाथों के ऊपर, नहीं लोग भी माना नहीं हाथ इस्तेमाल या कुदरत के माना में इस्तेमाल हुआ, उसको बहरा दी। फिर मैंने उसको अगर लेकिन वो इनकार करता रहा, मैंने उसको एक और दलील दी जिससे उसको खामोश होना पड़ा। मैंने कहा देखो अब हम तुम्हारी तरह की दलील देंगे, लेकिन मैंने कहा उसको गौर से सुनो। तो कहने लगे क्या, मैंने कहा ये बताओ सहाबियत के लुगत में क्या माने। तो कहा साहब जो मुसाहिब हो जो भी हो। मैंने कहा हजरत यूसुफ के मुसाहिब के लिए सहाबी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो काफिर भी थे मोमिन भी थे, बाद में कुछ मोमिन हो गए, वरना जब जेल में गए थे उस वक्त तो सभी के सब काफिर थे। तो मैंने कहा सहाबी के लुगवी माने क्या हुए, सहाबी के लुग़वी माना है जो भी तुम्हारे साथ मुसाहबत करे, जो आपके साथ बैठे उठे, जो आपके साथ रहता वो सहाबी है, ये लुग़वी माना है। मैंने कहा सहाबे रसूल के लिए क्या आपका अकीदा ये है कि जो भी रसूलुल्लाह के साथ बैठा वो सहाबी है। तो कहे नहीं, हम शर्त लगाते हैं ईमान की, जो साहिब ईमान होकर पैगंबर साथ जिंदगी गुजारे उसे हम सहाबी रसूल कहते हैं। मैंने कहा बस सहाबी के आप लुग़वी माने इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुरान ने इस्तेमाल किया है तो वहां आप लुग़वी माने इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह अहले बैत में हम शर्त इस्मत लगाते हैं कि जो मासूम होता है उसे अहले बैत कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बजरानी मोहतरम, तो अब आ जाए अगर लुगत की बात, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आयत कह रही है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हिबा अन्कुम रिज्सा, यहाँ पे मैं सिर्फ दो लफ्जों पे गुफ्तगू करूंगा, बाकी भी कभी और। एक लफ्ज इन्नमा, एक युरीदो, युरीद माने इरादा, और इन्नमा यानी फकत, फकत अल्लाह का इरादा ये कि आपसे हर नजासत को दूर रखे, अब बाकी चीजों को रहने दें। यहीं से फैसला हो जाना चाहिए कि इरादा खुदा वंदे मुताल ने जो फकत के साथ इरादा किया वो इरादा क्या है। यकीनन मैंने आपके सामने इस्तिलाह तकवीनी और तशरी इस्तेमाल की होगी, क्योंकि ये कई माना में कई चीज़ों का, हिदायत भी तकवीनी होती है और तशरी होती है, इसी तरह इमामत भी तकवीनी है और तशरी है, विलायत भी तकवीनी है और तशरी है, नबूवत भी तकवीनी है और तशरी है, मैं बयान करूँगा, इसी तरह इरादा भी तकवीनी और तशरी है। लिहाजा तकवीनी क्या होता मैंने बयान किया होगा, लेकिन क्योंकि मुश्किल चीज है दोबारा इसको रिपीट करता हूं। तकवीनी चीज उसे कहते हैं जिसका ताल्लुक फिजिकल थिंग से होता है, फिजिकल चीजों से जिस चीज का ताल्लुक होता है उसे तकवीन कहते हैं, जिसका ताल्लुक शरीयत से होता है उसे शरई कहते हैं। तो खुदा बंदे मुताल का इरादा तकवीनी भी होता है, इरादा तशरी भी होता है, कुछ फिजिकल थिंग से खुदा का इरादा होता है, कुछ तशरियात से खुदा बंदे मुताल का इरादा होता है। जो भी चीज फिजिकल होती है उसे हम तकवीनियात कहते हैं, कायनात को कायनात इसीलिए कहते हैं, कुन फयाकून को कुन फयाकून इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये सब तकवीन से है, کون فیاکون کیونکہ کوئی چیز فزیکل میں ہو رہی ہوتی ہے, کائنات کیونکہ فزیکل میں پائی جاتی ہے اس لیے اس کو کائنات کہا جاتا ہے, ایک ہی مادے سے اس کو مادے تکوین کہتے ہیں. ہر وہ چیز, وہ چیز جو کہ فزیکل کانٹیکٹ رکھتی ہے اس کو ہم تکوین کہتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا, اگر اللہ کا ارادہ تشریح ہے تو حق اہل سنت کے ساتھ ہے, اگر ارادہ تکوینی ہے تو حق اہل تشریح کے ساتھ ہے. اب یہ کون بیان کرے کہ یہاں پہ اللہ کا ارادہ تکوینی ہے یا ارادہ تشریح؟ خدا نے تو نہیں بتایا ہمارا ارادہ کیا ہے. اب میں پہلے ارادہ سمجھا دوں تو ارادہ ہوتا ہے کیا؟ ارادہ اصل میں دنیا میں آپ بھی ارادے دن بھر کرتے ہیں, مشیت کسی چیز کی چاہت کو کہتے ہیں, کسی چیز کے وش کرنے کو کہتے ہیں مشیت. اس وش کے لیے جب آپ کچھ کام کر ارادہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ارادہ, جس کو ہم ول کہتے ہیں. وش کو جب ہم ول کہتے ہیں یا ہم اردو میں اس کو ارادہ کہہ دیتے ہیں, جب ہماری کوئی خواہش ہوتی ہے جو مشیت ہوتی ہے اس کو ہم پہناتے ہیں. مجھے پیاس لگی ہے یہ میری خواہش ہے, لیکن پانی پینے کا میرا جو ارادہ ہوا تو میں نے پانی اٹھا کر پی لیا. خداوند متعال کا بھی اسی طرح سے ہے, یہ کائنات میں خداوند متعال کا ارادہ تکوینی بھی ہے اور ارادہ تشریح بھی ہے. دونوں میں فرق جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے, اگر ارادہ تشریح ہو تو اس میں خلاف کا امکان ہے, یعنی ہو سکتا ہے اللہ ارادہ کرے وہ چیز نہ ہو, لیکن اگر اللہ ارادہ تکوینی کرے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز نہ ہو, کیونکہ اس کا تعلق فزیکل تھنگ سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کائنات میں اربوں سال سے کروڑوں سال سے یہ سورج نکلتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے, اس لیے اپنے وقت میں نکل کے غروب اس لیے ہوتا ہے, خدا بند متعال اس کے لیے ارادہ تکوینی کیا ہوا ہے. لہذا خدا کے ارادے سے نکلتا ہے, اسی کے ارادے سے ڈوب جاتا ہے. جتنے پودے کھلتے ہیں, پھول بنتے ہیں, چرندے ہوتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, سب خدا بند متعال کے ارادے تکوینی میں ہے, اور کسی ایک چیز میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا. آپ ملینس اور ٹریلینز بیج ڈالتے ہیں لیکن گندم سے گندم, جو سے جو, گلاب سے گلاب, گیندے سے گیندا, چمیلی سے چمیلی, تربوز سے تربوز, خربوز سے خربوز, کوئی چیز بھی بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے ان سب کو اپنے ارادے کے تحت رکھا ہوا ہے. اللہ کے ارادے سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی ہے. اللہ جب چاہتا ہے سورج نکلتا ہے, جب چاہتا ہے غروب ہو جاتا ہے. جس دانے کے اللہ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ اس سے سرپیچی نہیں کر سکتا, وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا. لہذا کائنات میں اتنے پھول کھلتے ہیں لیکن وہ وہی کھلتے ہیں جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اتنی آبادیاں ہوتی ہیں, اتنے زرخیز زمین ہوتی ہے, لیکن وہ زمین انہی کلیوں کو کھلاتی جن پر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اور ہو نہیں سکتا کہ آپ گندم بوئیں اور جو کاٹیں, یہ ممکن نہیں. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
بات ذرا مشکل ہے, اس لیے غور سے سنیے گا. مثال کے طور پر ارادہ تشریح بتا دوں, ارادہ تشریح کیا ہوتا ہے؟ خدا بھی ارادہ تشریح کرتا ہے لیکن اس میں خلاف ہو جاتا ہے. خدا بند متعال نے یہ ارادہ کیا جب انسان کو بنایا کہ وہ ہماری عبادت کرے, تو قرآن کہہ رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو خدا کا ارادہ تھا تو اللہ نے بنایا کہ انسان بھی اس کی عبادت کریں اور جنہ بھی اس کی عبادت کریں, لیکن وہ عبادت تکوینی طور پہ خدا نے نہیں کروائی تھی. اگر خدا تکوینی طور پہ عبادت کراتا اور ارادہ وہاں پہ تکوینی ہوتا تو مجال نہیں تھی نماز کا وقت ہوتا ہمارا سر نہ جھک جاتا. جب وہ سورج کو جھکا دیتا اس کے وقت میں تو ہمارا سر بھی جھکا دیتا, کیونکہ اس نے ارادہ وہاں تشریح کر کے ہمیں ول دے دی ہے, اختیار دے دیا ہے. وہاں پہ ہم خلاف کر سکتے ہیں. اتنی انسانیت ہے جو خدا کی عبادت نہیں کرتی, لیکن خدا نے تو عبادت کے لیے خلق کیا تھا انہیں. وہاں پہ خدا نے ارادہ کیا تھا لیکن اس ارادے کو پورا نہیں ہوا, اس لیے کہ ارادے تشریح میں چیز پائی جاتی ہے کہ خدا ارادہ کرے ہو سکتا ہے وہ چیز نہ ہو. بالکل اب اپنے آپ پہ آ جائیے تاکہ محدود ہو جائے بات اور آسان ہو جائے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو پیاس لگی ہو, پانی سامنے رکھا, آپ ارادہ کریں پانی پی لینے کا, تو پانی آپ پی لیں گے. اس میں اتنی آپ کو قوادی ہوگی کیوں, یہ سارا کے سارا ارادہ تکوینی ہے. ہاتھ کا اٹھنا, پانی کا پی لینا, سب ارادہ تکوینی ہے. لیکن آپ کہیں میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا, یہ ارادہ تکوینی ارادہ نہیں ہے, اس پہ آپ کا ایسے اختیار نہیں, اس میں ہو جائے گا آپ کے منہ سے جھوٹ نکل جائے گا. اس لیے وہ ارادہ تشریح ہے. جہاں جہاں ارادہ تشریح ہوتا ہے وہاں پر امکان ہوتا ہے کہ اس ارادے کے خلاف کچھ ہو جائے, لیکن جہاں جہاں ارادہ تکوینی ہو جائے وہاں پر کچھ خلاف نہیں ہو سکتا. اب ہمیں دیکھنا یہ کہ یہاں پر جو اللہ یہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت, اب اہل بیت سے مراد چاہے آپ ازواج مطہرات بھی لیں اور پنجتن پاک بھی لے لیں, لیکن اگر ہم یہ کہیں اللہ کا صرف برائیوں سے روکنے کا ارادہ ان سے تھا. لفظ صرف تو لگانا پڑے گا کیونکہ پہلے انما ہے. اگر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ اللہ چاہتا تھا صرف ان سے ارادہ رکھے, ان کو پاک و پاکیزہ رکھے, ان کو ہر برائی سے دور رکھے, تو سوال یہ ہوگا ان میں کیا خصوصیت تھی؟ اللہ نے اور انسانیت کے لیے بھی یہی ارادہ کیا تھا. ہر انسان کو خدا چاہتا ہے گناہ سے دور رہے, ہر انسان کو خدا چاہتا ہے معصیت سے دور رہے, ہر انسان کے لیے خدا کا ارادہ ہے کہ وہ نیک اعمال انجام دے, ہر خدا انسان کے لیے خدا کا ارادہ ہے کہ اس کی عبادات انجام دے. تو پھر یہاں پہ فقط کا لفظ عبث ہو جاتا ہے, اس کے کوئی معنی نہیں رہتے. یعنی اہل بیت سے بھی خدا چاہتا ہے برائی کو دور رکھے, ادھر سے ساری انسانیت سے بھی چاہتا ہے خدا کو انسان اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو برائی سے دور رکھے. اگر ارادہ تشریح یہاں پہ لے لیا جائے تو پھر اس میں اہل بیت میں اور آپ افراد میں فرق نہیں رہ جاتا, پنجتن میں ازواج مطہرات عام افراد میں فرق نہیں رہ جاتا, کیونکہ اللہ چاہتا تو یہ سب کے لیے ہے. تو پھر فقط کیوں کہہ رہا ہے؟ فقط یہ بتانے کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے میرا ارادہ تکوینی ارادہ ہے. یہاں پہ عصمت دی گئی ہے. عصمت وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ تخلف نہیں ہو سکتا, معصوم غلطی نہیں کر سکتا, معصوم خطا نہیں کر سکتا. اگر ارادہ تشریح ہوتا تو جیسے انسان سے خطا ہوتی ہے, عام افراد سے خطا ہوتی ہے, یہاں پر بھی خطا ہونے کا امکان ہوتا. اگر یہاں پہ خطا ہونے کا امکان ہوتا تو پھر خدا انما کا لفظ نہ استعمال کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
میں
اس بات کو تھوڑا سا ایک مثال دے کے بات سمجھا دوں تاکہ اور واضح ہو جائے. اگر حرم کے باہر, یعنی حرم سے مراد مکہ مکرمہ ہے, اگر حرم کے باہر آپ جانتے ہیں تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ حرم کے اندر غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے, سب کے سب تمام مسلمان سے متفق ہیں کہ حرم کے اندر غیر مسلم کو, مشرک کو, کافر کو اندر داخلہ نہیں دیا جاتا. حرم جو کافی دور تک ہے مکے میں, لیکن یہ کہ مسجد الحرام میں نہیں, مسجد الحرام سے بہت پہلے حرم شروع ہو جاتا ہے اور اس حرم میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا. اگر یہ کہا جائے, وہاں پر کوئی لکھ دے کہ فقط یہاں پر مسلمان داخل ہو سکتے ہیں, تو اور مراد اس کی وہ ہو کہ نہیں اس کے علاوہ اور بھی داخل ہو سکتے ہیں, یعنی غیر مسلم بھی داخل ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر فقط کا لفظ بے معنی ہوتا ہے. جب آپ سب کو داخل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, سب کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں, تو پھر آپ فقط نہ لگیں, آپ کہیں لوگ داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فقط کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو پھر اس کے آگے ایک صفت جو بیان کریں مسلمان, تو اس کے معنی مسلمانوں کے علاوہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا, غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے. اگر داخلہ سب کے لیے عمومی ہوتا تو بھی یہ جملہ نہیں لکھ سکتے. اگر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی کہ مسلمان بھی داخل ہو سکتے غیر مسلمان, تو کوئی لفظ فقط نہیں لگا سکتا تھا کہ سوائے مسلمانوں کے کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. سوا کا لفظ ہم فقط کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے تھے. یعنی کہ فقط کا لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب کسی چیز میں کوئی خصوصیت پائی جاتی ہے, وہ چیز عمومیت سے دور ہوتی ہے, عام افراد کے لیے نہیں ہے. اگر اللہ کا ارادہ تشریح ہوتا تو وہ تو اللہ کا سب کے لیے ارادہ ہے. مجھ سے بھی خدا کہتا ہے تم برائی سے دور رہو, آپ سے بھی کہتا ہے خدا برائی سے دور رہو, کل والوں کو بھی کہتا تھا برائی سے دور رہو, آج والوں کو بھی کہتا ہے. تا قیامت خدا کا پیغام ایک ہی رہے گا ہر انسان سے, رہے گا کہ تمہیں برائیوں سے دور رہنا ہے اور اچھائیوں کے نزدیک جانا ہے. اگر فقط یہ مراد یہاں پہ سب افراد ہوتے تو خدا کبھی لفظ فقط استعمال نہ کرتا. لفظ انما اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ارادہ خاص ہے, اور اگر ارادہ خاص ہے تو دو ارادوں کے علاوہ تیسرا ارادہ نہیں ہوتا, وہ ارادہ تکوینی ہوتا ہے. اور اللہ جب کسی چیز کے لیے ارادہ تکوینی کر لیتا ہے تو پھر اس میں خلاف نہیں ہو سکتا, اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ اتنی بڑی کائنات کو جو خدا چلا رہا ہے یہ اپنے ارادے سے, یہ کہکشا جو ہے وہ خدا کے ارادے سے ہے, یہ سورج جو چل رہا ہے خدا کے ارادے سے ہے, یہ چاند جو چمک رہا ہے خدا کے ارادے سے ہے, یہ ستارے جو چمک رہے ہیں خدا کے ارادے سے ہیں. کسی ستارے میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چمکنا چھوڑ دے, سورج میں مجال نہیں ہے وہ سیکنڈ دیر سے آ جائے, چاند میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ تھوڑا پہلے آ جائے. یعنی جس طرح سے خدا ارادہ کرے گا کائنات اس کے تابع
में रहेगी। खुदा ने जो कानून बना दिया है उस कानून से ये चीजें सरपेची नहीं कर सकती हैं। लिहाजा खुदा पूरी कायनात को चलाता है अपने इरादे तकमीनी से, क्योंकि वहां पे खता का इम्कान नहीं होता है। हमारे यहां हो सकता है कभी सिग्नल फेल हो जाए तो ट्रेनें लेट हो जाती हैं, बर्फ आ जाए तो जहाज लेट हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास इरादा इरादे तशरीह होता है। हम इरादे तशरीह करते हैं कि ये काम करेंगे, हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन जब खुदा इरादा करता है तो वहां पे तखल्लुफ नहीं होता। इरादे तकवीनी में खुदा के तखल्लुफ नहीं होता। जब खुदा ये कह रहा है कि हर रिक्स से मैं दूर रखना चाहता हूं और आपको पाक और पाकीजा रखना चाहता हूं, तो मानना पड़ेगा अहले बैत वही अफराद हो सकते हैं जो मासूम हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने कलर्स कर दिया कि अज़वाज रसूल का मकाम मंजिलत अपनी जगह पर, लेकिन इस्मत का दावा उनके लिए किसी ने नहीं किया, क्योंकि एक हदीस नहीं मौजूद हमारे पास कि रसूलुल्लाह से ज्यादा हम कोई अकीदा नहीं रखते हैं। जिन जिन अफराद के लिए रसूल ने कहा ये मासूम है, उन अफराद को हमने शामिल अहले बैत किया। हाँ, लोगवी हवाले से आप किसी को भी कहते ना अहले बैत, लेकिन इस्तेलाही हवाले से, वरना तो ये पार्टी बाजी कहलाएगी। अगर आप लोगवी हवाले से देखें तो फिर इस दौर रसूलुल्लाह पार्टीबाजी कर रहे थे, यानी कि वो अपने जितने रिश्तेदार थे उन सबको दूसरों पे क्यों फजीलत दे रहे थे बगैर फजल के। जब अल्लाह के रसूल ये कह रहे हैं मसलो अहले बैती का सफीनत नू, तो इसके माने ये है कि सबके सब अहले बैत ऐसे ही हैं। जनाब अकील भी वैसे ही हैं, जनाब जाफर भी ऐसे ही हैं, जनाब मुस्लिम भी ऐसे, ऐसा तो नहीं है। ये तो नहीं है, ये तो सब खुद हिदायत पाने वाले अफराद हैं, ये तो हिदायत लेने वाले अफराद हैं, ये कैसे निजात दे सकते हैं? ये तो खुद मोहताज है इनकी कोई हिदायत करे। ये सब जितनी औलादे अकील औलादे जाफर है जितने हैं, ये तमाम गैर मासूम शख्सियात है आइन अथार की जितनी औलादे सब अहले बैत में लोग भी हवाले से, लेकिन वो सफीने नूह नहीं बन सकते, वो मिसले सफीने नूह नहीं बन सकते, इसलिए कि ये खुद मोहताज हिदायत हैं। सफीने नूह वो बनेंगे जो इस्मत के धारे होंगे, जो इस्मत के सवारे होंगे। लिहाजा अजीजान मोहतरम अहले बैत से मुराद यहाँ पे फकत वो अफराद हैं जो मासूम हो, जिनकी इस्मत का खुदा ऐलान कर रहा है। जब वो मासूम होते हैं तो खुदा कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, ए अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो। इसलिए जिस तरह अल्लाह और रसूल की इताअत में खता का इम्कान नहीं, इस तरह साहिबान अम्र में खता पर बात करें मोहम्मद वाले। लिहाजा इंसान देख देखे तो ये, और दूसरी मैंने कल अर्ज कर चुका कि कोई हदीस हमारे पास मौजूद नहीं, किसी ज़ौजे रसूल से कोई क्लेम हमारे पास मौजूद नहीं, किसी भी मुफस्सिर ने ये लिखा ही नहीं कि हमने रसूलुल्लाह से ये हदीस सुनी है कि इसमें अज़वाज शामिल है ना अज़वाज कहती हैं। हर शख्स ने यही लिखा कि चादरे तथहीर में ये पंजतन जमा हुए थे तब ये कुरान की आयत नाजिल हुई थी। लिहाजा जहां तक रसूल का अमल है, जो सुन्नत रसूल से आगे बढ़ जाता है तो वहीं इख्तलाफ हो जाता है। अगर सुन्नत रसूल पे पाबंदी की जाती है तो पैगंबर इस्लाम ने खड़े होकर 6 महीने या बाद रिवायतों में 4 महीने खड़े होकर पहचनवाया, देखो ये आयत तथहीर नाजिल किन की शान में हुई है, ये वो अहले बैत हैं जिन पर मैं सलाम करता हूँ, ये मेरे वो अहले बैत हैं जिनका मैं एहतराम करता हूं, इसलिए कि अल्लाह ने इनको ऐसा बनाया है, खुदा ने इनको अपने इरादे तकवीनी का मजहर बनाया है। इंसान अल्लाह ने इनको अपने इरादे तकवीनी का मजहर बनाया है, जिस तरह से इरादे तशरी का भी मजहर बनाया था। अगर इंसान नमाज पढ़ता नजर आए तो यानी अल्लाह के इरादे पे अमल करता नजर आ रहा है, अगर वो सच बोलता नजर आए तो अल्लाह के इरादे तशरी के मुताबिक काम करता नजर आ रहा है। ये लेकिन वो हस्तियां थी जो इबादात में भी अल्लाह के ताबे थी लेकिन कायनात में भी विलायते तकवीनी रखती थी। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से ये चांद और सूरज ये कायनात चल रही है क्योंकि उसने इरादा किया है, लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी थे खुदा ने अपने इरादे का मजहर बना दिया तो वो जमीन पर बैठते थे, चांद को दो टुकड़े करते थे, सूरज को पलटा लेते थे, सितारे को उतार लेते थे, तस्वीर को शेर बना देते थे, ये उनका इरादा था क्योंकि वो वली खुदा थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इनका कायनात पे कंट्रोल इसलिए था, अल्लाह के इरादे का ये मजहर थे। अब ये मजहर क्यों थे कभी और बयान करूंगा, लेकिन अल्लाह के क्यों के ये इरादे का मजहर थे, लिहाजा ये बस इरादा करते थे उस चीज को होना पड़ता था। तभी तो अजान मोहतरम जब अमीरुल मोमिनीन जा रहे थे खैबर में, तो किसी ने रोक कर कहा मौला अली ना जाइए क्योंकि सितारे आपके मुखालिफ हैं, अगर आप जाएंगे तो फतह याब नहीं हो सकते। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम किसकी बात करते हो, जरा गौर से हिसाब किताब लगाओ, मैं आगे जा रहा हूं। अब जो मौला ने कदम लगाया अब आगे बढ़ाया, उसने पलट के तो देखा कहा मौला आप जाना चाहते जरूर जाइए क्योंकि सितारे आपकी मुआफ़त में। फिर मौला ने पलट के यही जवाब दिया था जो सितारों की इत्तेबा करते हैं वो तुम जैसे होते हैं, जिनकी सितारे इत्तेबा करते हो हम जैसा करते। खुदा ने चांद को दो शक किए ये बड़े होकर किया था, अली ने जब सूरज को पलटाया ये बड़े होकर पलटाया था, जहरा की डेड़ी पे सितारा आया ये बड़े होकर आया था, ये इस दुनिया में आने के बाद ये काम हुआ था। लेकिन अली ने आते वक्त ये बता दिया था मैं कुदरत खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ, मैं इरादे खुदा का मजहर बन के आ रहा हूँ। इसलिए काबे की दीवार ने शक होकर बताया कि मेरा मौला आ रहा है, जिसकी वजह से मैं फातिमा बिनती असद तो कई मरतबा खाने काबा का तवाफ करती थी, वहां पे शक नहीं होता था। जब काबे को ये पता चला कि मेरा मालिक आ रहा है, मेरा मुझ पर इरादा करने वाला आ रहा है, जो खुद पाक है मुझे पाक करने वाला आ रहा है, जो बुतों से मुझे निजात देने आ रहा है, तो फिर उसको मुस्कुराना था, उसे दर बनाना था। यही वजह है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो खास ग्रुह का नाम है जिसे हम मासूमीन कहते हैं। लिहाजा जितनी रिवायात हैं जहां जहां लफ्ज, और आज भी आप देख लें, आज भी जब आपसे पूछते रहे कि आप अहले बैत के मानने वाले हैं, तो वह मुराद ये खास ग्रोह होता है, वहां नहीं होता। चाहे अहले सुन्नत इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, चाहे अहले तशी इस लफ्ज को इस्तेमाल करें, बाद अहले सुन्नत भी कहते हैं हम भी अहले बैत को मानते हैं, मुराद उनकी ये नहीं होती हम भी अजवाज को मानते हैं, वो तो पता सभी मानते हैं, अहले बैत को मानते से मुराद ही कि हम भी हसनैन को मानते हैं, हम भी अली और फातिमा को मानते हैं। यानी अहले बैत आज भी दुनिया में अहले बैत का लफ्ज मखसूस अफराद से है। आज भी जब लफ्ज अहले बैत इस्तेमाल होता है तो मुराद यही अफराद होते हैं। ये लो इंसान गुमराह ना हो जाए कि इंसान तफसीर में देखे जाकर तो वहां पे देखे, यहाँ पे दो राय पाई जाती है। खुद देख ले कि मजामे इस्लामी के अंदर, अब मुसलमानों के अंदर जब आज भी लफ्ज अहले बैत जब इस्तेलाम में इस्तेमाल होता है, रिवायत में इस्तेमाल होता है, तो वहां पे कोई खास ग्रोह होता है या सब खानदान रसूल होते हैं? अगर सब खानदान रसूल थे तो उनमें कौन सी हकीकत पाई जाती थी? आप ये बताइए, जनाबे अकीम, जनाबे जाफर, मैं इनके नाम इसलिए हूं इनके नाम लिए जाते हैं, तो इनकी इत्तबा हमारे इत्तबा अल्लाह की इत्तबा नहीं है, इनकी इताद रसूल की इताद नहीं है, क्योंकि ये खताकार हैं। ठीक है अमीरुल मोमिनीन के भाई हैं लेकिन गैर मासूम है ये, क्योंकि गैर मासूम है हम गैर मासूम के, हद तक आप देखें हमारी तो इतनी ज्यादा दिक्कत है इस मसले में। मुझे याद नहीं है, बात को मैं तमाम करूं, मुझे याद नहीं है कि मैंने अर्ज किया, मेरे पास एक आते थे कुछ बिरादरान अहले सुन्नत, उनसे मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था देखो इमामत के सिलसिले में हम दलील के कायल हैं, अगर ना मानने पर आए तो हजरत अब्बास को भी नहीं मानते क्योंकि हमारे पे दलील इमामत नहीं है। हजरत अब्बास के हर फजल को मानते हैं, उनके इल्म को मानते हैं, उनके जोहद को मानते हैं, उनके तकवे को मानते हैं, उनकी इताअत को मानते हैं, वो अली के बिला फजल बेटे थे इस बात को मानते हैं, सारी करामतों को मानते हैं, साहिब इजाज मानते हैं, साहिब मौजजा मानते हैं, बाबुल हवाइज मानते हैं, अलम उठाते हैं, नजर देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इमाम नहीं मानते, इसलिए कि हमारे मासूमीन ने उनके लिए इमाम नहीं कहा। पैगंबर इस्लाम के हदीस में उनका नाम नहीं था, लेकिन जिस जिसके लिए था, तो मैं कहा बस हमें कहने दीजिए, अगर हम किसी की इमामत और खिलाफ خلافت کا انکار کرتے ہیں تو بطور بغض و عداوت نہیں کرتے, ہم مجبور ہیں کہ جو پیغمبر نے جن کو امام بنایا ہے ہم انہی کو امام تسلیم کرتے ہیں, جن کو معصوم بنایا ہم انہی کو معصوم تسلیم کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ
وسلم.
بحث تھوڑی مشکل تھی لیکن انشاءاللہ اگر نہیں سمجھ میں بعد میں سوال کر سکتے ہیں, میں نے کوشش کی میں مثال دے کر بات سمجھا سکوں, لیکن اذان محترم پھر بھی ہو سکتا ہے کمی ہے بعد میں پوچھی جا سکتی ہے. اذان محترم آج جس کا تذکرہ ہے وہ سفیر حسین ہے جس کو مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کہتے ہیں. جناب عمران کے یعنی جنہیں ابو طالب کہتے ہیں چار فرزند تھے, ایک طالب سب سے بڑے, پھر عقیل, پھر جعفر, پھر مولا علی, یہ چار تھے بھائی, چار بھائی تھے اور ہر بھائی میں 10 سال کا فاصلہ تھا. سب سے بڑے طالب تھے. پھر جناب عقیل کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہیں اور اسی طرح جناب جعفر کی اولاد میں حضرت زینب کے شوہر آتے ہیں جناب عبداللہ, وہ جناب جعفر کی اولاد ہے اور جناب جعفر کی بھی اولاد کربلا میں شہید ہوئی ہے, ان کی بھی نسل کربلا میں شہید ہوئی ہے. یہ مسلم ابن عقیل جو ہیں جناب عقیل کی اولاد ہیں جو امیر المومنین کے سگے چچا ہیں, امام حسین نے ان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا. جب خط پر خط آئے مکے میں, جب خط پر خط آئے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر آپ آ جائیے تو ہم یزید کے خلاف قیام کریں گے. جب بہت سارے خطوط آئے تو امام نے حجت تمام کرنے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا اور کہا مسلم جا کر دیکھ لو اور ان سے پوچھ لو اگر یہ واقعی حمایت کرنا چاہتے, کیونکہ امام حسین جانتے تھے اہل کوفہ کو, مولا علی کے ساتھ بھی دغا کیا تھا, امام حسن کے ساتھ بھی دغا کیا تھا, لہٰذا امام حسین کو خطرہ تھا کہ بلا تو نہیں پیچھے ہٹ جائیں گے, اس لیے امام نے ان کو جناب مسلم کو بھیجا. لیکن جناب مسلم جب گئے تو اتنے افراد نے بیعت کی ان کے ہاتھوں, اتنے افراد نے بیعت کی کہ جناب مسلم مطمئن ہو گئے اور مطمئن ہو کر انہوں نے خط لکھ دیا کہ کوفہ جو ہے آپ کی موافقت میں ہے, واقعی اگر آج آپ آ جائیں کوفے میں تو یقیناً یہاں انقلاب آ جائے گا, لوگ آمادہ ہیں. یزید بھی جانتا تھا, اعزاز محترم مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پچھلے سال نماز جمعہ کا خطبہ جو دیا تو اس میں تو یہ بات کہی تھی آپ کے درمیان, یہ بات جب بھی اہل کوفہ کا نام آتا ہے تو ہم انہیں برا تو سمجھتے ہیں لیکن ایک امتیاز اہل کوفہ کا پایا جاتا ہے تمام امت اسلامیہ پر کہ جب یزید حکومت پر قابض ہو گیا تھا اور اس نے اپنی حکومت بنا لی تھی تو تمام اہل بصرہ ہوں, چاہے اہل مکہ ہوں, چاہے اہل مدینہ ہوں, چاہے اہل کوفہ عراق ہوں, سب کے سب افراد جو تھے انہوں نے اس کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا تھا. فقط اہل کوفہ تھے ان میں اتنی شعور تھا کہ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا, مخالفت کی تھی, تبھی امام علیہ السلام کو, جبکہ مکے میں امام بیٹھے ہوئے تھے جو مرکز تھا, مدینہ کو امام کو چھوڑنا پڑا جو مرکز تھا, لیکن وہاں کے مسلمانوں میں اتنا شعور نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بھی اہل تاریخ نے لکھی کہ اور مسلمانوں کی نسبت یہ بہتر تھے کہ ان میں اتنا شعور تھا کہ امام کا ساتھ دیں, ساتھ نہیں دیا وہ اور بات ہے, لیکن اتنا شعور تھا. کہنے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ دارالحکومت امیر المومنین کا رہ چکا تھا, لہٰذا امیر المومنین کے خطبات ابھی ان کے کانوں میں باقی تھے, اس وجہ سے اتنا دین ان کے پاس موجود تھا. لیکن عزیزان محترم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب جناب مسلم نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد بھری ہوئی, اس لیے بیعت کرنے والے تھے. وہاں سے یزید نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اس کو خط لکھا کہ کوفہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے, جاؤ تم کوفے کو جا کے بچا لو, اور اس کو خط لکھا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں شریک کروں گا, اس سے زیادہ بڑی حکومت دوں گا اگر تم کوفہ بچا لو. یہ جب کوفہ آتا ہے اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے, اس لیے کہ ظالم اور جابر شخص تھا, اس نے جس کو چاہا پیسوں کے ذریعے خریدا, کسی کے مال و مویشی پہ قبضہ کیا, کسی کی عزت و آبرو کو لیا, لہٰذا اس نے کسی کو قیدی بنایا, کسی کو قتل کیا, جو جس طرح سے رک سکتا تھا اس نے روکنے کی کوشش کی. اب کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے تھے کہ جب مسلم ابن عقیل نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو اذان محترم مسلم دیکھتے ہیں میں تنہا کھڑا ہوں, اس لیے سب خوف کی وجہ سے اب جا چکے تھے کسی کے اوپر, کیونکہ اعلان ہو چکا تھا جس نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی, نہ اس کا گھر و بار محفوظ رہے گا, نہ اس کی آل اولاد محفوظ رہے گی, हर चीज पे मुसादरा, हर चीज पे कब्जा किया जाएगा और वो हुकूमत के अंडर में चली जाएगी। बहरहाल खौफ था, उस खौफ की बिना पे वो चले गए। अब मुस्लिम जो थे तनहा फिर रहे थे, ये एक जगह से इधर, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर आखिर मुस्लिम गरीबुल वतन थे, एक जगह जाकर बैठ गए। बैठने के बाद जनाब मुस्लिम बैठे थे कि इतने में एक मोमिना होती है, उसने दरवाजा खोला, देखा कि एक अजनबी बैठा है। कहा, इस रात में तुम्हें नहीं पता शहर के हालात खराब है, तुम इधर क्या करते हो? मुस्लिम ने कहा, मुझे प्यास लगी है। वो मोमिना जाती है और प्यास का इंतजाम करती है, पानी लेकर आती है। जनाब मुस्लिम पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद फिर बैठ जाते हैं। जब वो फिर बैठते हैं तो मोमिना कहती है, देखो ये शरीफों का घर है, ये देखो मेरा घर है, तुम एक अजनबी मर्द हो, मुनासिब नहीं है, शहर के हालात भी खराब है, तुम्हें पता इब्ने ज़ियाद ने क्या ऐलान किया है, मुनासिब नहीं है, तुम मेरे घर के सामने बैठो, एक मरतबा तुम्हें जहां जाना है वहां चले जाओ। उस मोमिना से सर झुकाकर कहते हैं, रयूर मुस्लिम कहते हैं, कहते बीबी वो कहां जाए जिसका कोई कूफे में घर ही ना हो। एक मर्तबा उसने घबरा के पूछा, का क्या मतलब है, आप कूफे के रहने वाले नहीं है? कहानी अना मिनल मदीना, मेरा ताल्लुक मदीने से है, मैं मदीने का रहने वाला हूँ, बस मदीने का नाम सुनना था। सुन तो रही थी कि हुसैन चल दिए हैं और मक्के में मौजूद है। कहा, यकीनन ये कोई आशना होगा। पूछा कि आपका नाम क्या है, आपका तारुफ क्या है? मुस्लिम ने कहा, मेरा नाम मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब है, मैं अकील का फर्जंद हूँ, मैं इमरान का पोता हूँ, मैं सबीर हुसैन बनकर आया था, जमाने ने मुझे तन्हा छोड़ दिया। अजीज़ मोमिना कहती है, आप तो मेरे आका के सफीर हैं, आप तो मेरे मौला के सफीर हैं, सराफों पर तशरीफ लाइए, आप मेरे घर में आइए, मैं खाना भी दूंगी, मैं पानी भी दूंगी। इमाम को बिठाया गया और बड़ा एहतमाम से खाना भी किया, लेकिन कहा मुस्लिम से, कहा मेरा शौहर जो है और मेरा बेटा जो है ये दुश्मन है, ये सुबह से दुश्मनी कर रहे हैं, ये सुबह से आप ही किला पीछे निकले हुए हैं, ये अपने ज़ियाद से मुखबरी न कर दें, मुझे इनसे खौफ आता है, अगर हो सके तो आप पीछे हुजरे में चले जाएं और वहीं पर रात को इबादत कीजिए, वहीं पर आराम कीजिए। जनाब मुस्लिम आखिर वक्त जाते हैं और वहीं पर इबादत करते हैं, वहीं पर रात गुजारते हैं। अभी सुबह फजर का वक्त होता है कि यहाँ पे उसका बेटा या इसका शौहर जाकर बता देता है कि हमारे घर में मुस्लिम इब्ने अकील है। अब जब घोड़ों की टापों की आवाज सुनी, मुस्लिम ने पटका बांधा, अमामा बांधा, अबा ली और तलवार को अपनी नयाब से निकाल कर बाहर खड़े हो गए। जैसे ही बाहर आए, मोमिना कदमों पे गिनने लगी, कहा मेरे मौला के सफीर, ये आप कहाँ जाना चाहते हैं, हालात खराब है। कहा, तुम आवाजें नहीं सुन रही हो, किसी ने मुखबरी कर दी है, ये फौज मुझी को ढूंढने आ रही है, ये मैं नहीं चाहता कि ये लोग तुम्हारे घर पे हमला करें, मेरी वजह से तुम्हारा घर ताराज हो जाए। मैं कहूंगा मुस्लिम इतनी मोमिना का ख्याल था, चकरबला आकर देखते कि नवासे रसूल का घर कैसे ताराज किया था, आले रसूल के खयाम में कैसे आग लगी थी। अजीज मुस्लिम की गैरत जवाब नहीं देती। मुस्लिम कहते, मेरी गैरत नहीं कहती है, मैं घर से बाहर जाऊंगा। मुस्लिम बाहर जाकर जंग करते हैं, मैंने खुलासा किया, जंग बेहतरीन अंदाज से करते हैं, लेकिन दस्ते पे दस्ता मंगवाया जाता है। एक मरता इब्ने ज़ियाद कहता है, एक आदमी से जंग करने गए हो तुम, उसको पे बात बात पे फौज मंगवा रहे हो। कहा, तुमने किसी कूफे के बक्काल से, किसी बनिया से लड़ने को नहीं भेजा है, ये बनी हाशिम का शेर है, ये अली का भतीजा है, ये अकील का बेटा है, ये खानदान बनी हाशिम से है, इससे लड़ना इतना आसान नहीं है। अजीजों किसी तरह से जनाब मुस्लिम को घेरा गया, घेर कर दारुल इमारा पे लाया गया। जब दारुल इमारा पर लाया गया, जनाब मुस्लिम दारुल इमारा के दरवाजे पे बैठ गए और बैठ कर ये कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। अजीजों पानी पेश किया गया, मुस्लिम ये करबला का था इसलिए पानी मिल गया, पानी पेश किया। अब जो मुस्लिम ने मुंह से लगाया तो मुंह से खून आ रहा था, वो पानी नजिस हो गया, लिहाजा मुस्लिम ने फेंक दिया। फिर पानी दिया गया, फिर वो खून से अबरूद हो गया, फिर जनाब मुस्लिम ने फेंक दिया। तीसरी मरतबा मुस्लिम को पानी दिया गया। मैं कहूंगा मौला, मैं जनाब मुस्लिम, आप कितने खुशकिस्मत थे कि आपने तीन मरतबा पानी मांगा, आपको हर मरतबा पानी मिल गया। वहां अली असगर ने मांगा था, लेकिन अली असगर को ना मिला था, लेकिन प्यासे का सभी मशीयत ये है कि मैं इस दुनिया से प्यासा जाऊं, नजिस पानी मैं पी नहीं सकता, खून मेरे जबान से जारी है, मेरे दांत से जारी है, मैं कहूंगा मौला प्यासे के शबीर के, प्यासे इस दुनिया से जाएंगे। जनाब मुस्लिम अंदर जब जाते हैं तो जनाब मुस्लिम से कहते हैं जाओ अमीर को सलाम करो। जनाब मुस्लिम कहते मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के, मैं हुसैन को सलाम करता हूँ, मेरा कोई अमीर नहीं है। इब्ने ज़ियाद तौहीन से पूछता है, कहता है कि तुम्हारी क्या सजा रखी जाए, कहा जो तू सजा देना चाहता है, हुसैन के लिए मैं हर कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ वसीयतें उनको पूरा कर दे। इमाम जनाब मुस्लिम कहते मेरी कुछ वसीयतें उसे पूरा कर दे। इब्ने ज़ियाद एक शख्स को कहता है, कहते जाओ तुम मुस्लिम की वसीयतों को सुन लो। ये जाते किनारे बैठ जाते हैं, मुस्लिम उन्हें वसीयत करना शुरू करते हैं, कहते देखो मैं कूफे आया था, मैं तन्हा रह गया था और मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं था, तो मैंने कुछ दिरहम कर्ज लिए हैं, ये मेरी जरा बेचकर इससे मेरा कर्ज अदा कर देना, फला फला से मैंने कर्ज लिया है, देखे शरीयत की कैसी पाबंदी है, ये मेरी जरा बेचना और इससे मेरे कर्ज को पूरा कर देना। और फिर कहा देखो मैं साथ दो बच्चे भी लाया था, वो ना हो जाए उन बच्चों को वापस मदीने पहुंचा देना, उन बच्चों को वापस बारा तक पहुंचा देना, उन्हें मक्के तक पहुंचा देना, उनकी माँ वहां पर उनको पहुंचा देना। का तीसरी वसीयत क्या है, का तीसरी वसीयत ये है कि अगर तुम इन दो वसीयतों पे अमल ना भी करो, खुदा के लिए तीसरी वसीयत पे अमल कर लेना। कहा वो तीसरी वसीयत क्या है, कहा मैंने हुसैन को लिख दिया था माला कूफे आ जाए, लिहाजा हुसैन को मना कर दो कि वो कूफे ना आए। तो उसने कहा कि नहीं, अगर हुसैन को आना है तो आने दो, इस वसीयत पे अमल नहीं होगा। एक मर्तबा मुस्लिम ने हाथ जोड़ के कहा, कहा बाबा देखो अगर हुसैन का ना आ रहा होते मुझे परेशानी ना होती, हुसैन अरब रसूल के साथ आ रहे हैं, रसूल सादिया है, अली सादिया है, हुसैन के घर वाले खवातीन के साथ आ रहे, लिहाजा उनको दे दो ताकि वो जाके इजाजत दे तो वापस चले जाए। अजीजों ये आता है, ये मलाउन आता है और इब्ने ज़ियाद को सब कुछ बता देता है। इब्ने ज़ियाद भी इस पर लानत करता है, कहता है तू बड़ा खबीस है कि इसने तुम्हें अपना अमीन बनाया था, तूने आगे सब कुछ मुझे बता दिया, लेकिन अच्छा किया तूने बता दिया, कूफे के दरों को बंद कर दो, कोई ना हो जो कूफे की खबर लेकर जाए। अजीजों दारुल अमारा पे ले जाया गया, मैंने बहुत मुख्तसर किया, दारुल अमारा पे ले जाया गया, जनाब मुस्लिम ने कहा दो रकात नमाज पढ़ लूं, उसके बाद मक्के का रुख किया, कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बस सलाम करना था। एक मर्तबा हुसैन रास्ते में गिरिया करने लगे, अब्बास को आवाज दी, अली अकबर को आवाज दी, कहा मेरे नाके को बिठा दो, सारे नाकों को बिठा दो, अरे अमीदा को मेरे पास लाओ, मुस्लिम की बच्ची को बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, कैसी बच्ची पे नवाजिशे की, बच्ची को बोसे दिए। एक मर्तबा का चचा हुसैन इस तरह तो यतीमों का प्यार करते, बेटा से मुझे बाबा कहना, ये सुनना था कि अब्बास तड़प गए, माला क्या हो गया, जनाब अब्बास ने कहा अगर देखना चाहता है तो इन दो उंगलियों में देख ले। अब जो अब्बास ने देखा मुस्लिम का सर तन से जुदा था, अब्बास ने इल्तिजा की माला जिस एजाज से कूफा दिखाया है उसी एजाज से कूफा पहुंचा दे। इमाम ने सवाल रखा, कहा बेटा अब्बास ये कर भैया अब्बास ये कूफा है, अभी हमें कुर्बानियां दे दी है, मैं कहूंगा माला आज आप इंदौर से आपने अमीदा को गोद में बिठाया, उसे बोसा दिए, उसे सीने से लगाया, लेकिन माला जब 11 बार नम होगी, जब आपकी शहादत होगी तो सकीना को कोई तमाचे मारेगा, कोई गोशवारे छीनेगा, कोई दिलासा न देगा, एक या हुसैन से तमाचा लगेगा। अल्लाह लानतुल्लाह।
खुदा हमारे कलीले बातों को कबूल कर, खुदा हमारे गुनाहों को कभी वसा में रख, माफ कर।